ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா சாப்டர் 14 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 18. யா பஹத் ஹி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோக் ஹே, இஸ்மே பஹத் மஹத்வபூர்ண பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நிர்ணயாத்மிக் லக்ஷ்ய கே விஷய மே ஹமே பதாயேங்கே ஔர் ஹமே பதாயேங்கே கி கியா கர்னே சே ஆப்கா கியா ஹோனே வாலா ஹே, கோன் சே குண மே. பஹத் ஹி சுந்தர் ஸ்லோக் ஹே, ஆப் படோகே ஆப்கோ இஸ்மே பஹத் ஹி பஹத் ஜியாதா சீஸே, பஹத் சாரே ஹமாரே அந்தர் ஜோ க்யூரீஸ் ஹே வோ சப் ஃபினிஷ் ஹோ ஜாயேங்கி. இஸ் ஸ்லோக் கோ படனே கே பாத் ஏக் நிர்ணய லே சகேங்கே, டிசிஷன் லே சகேங்கே கி கியா கர்னா ஹே. तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक ही विधि है, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि नहीं तो कृपा की याचना. तो पूरे प्रेम श्रद्धा भाव के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனா ஶலாகய சக்ஷுரோன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபஹ கதாமஹயம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். வந்தே அஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாஶ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ர ஜாதம் சகண ரகுநாதன் விதம் தம் சஜீவம் சத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம். ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாத சகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகன்விதாஶ்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதி கோபீஷ கோபிக காந்த ஸ்ரீ ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சனம் கௌரங்கே ஸ்ரீ ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சூத தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச க்ருபாசிந்துப்ய ஏவச்ச பதீதனம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஜோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைதம் கதாதாரம் ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா மாத கி ஜெய் ஹோ. சாப்டர் 14 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 18. பகவான் கேத்தே ஹே, ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தி திஷ்டந்தி ராஜசாஹ ஜதன்ய குணவ்ருத்தஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாஹ. ஊர்த்வம் மத்லப் ஊப்பர் கியோர், கச்சந்தி மத்லப் ஜாத்தே ஹே, சத்வஸ்தா ஜோ சத்வகுண மே ஸ்தித் ஹே, யானி கி ஜோ சத்வகுண மே ஹே வோ ஊப்பர் கி தரஃப் ஜாத்தே ஹே. மத் तिष्ठन्ति राजसा, मध्य मतलब सेंटर में, मध्य में, तिष्ठन्ति मतलब निवास करते हैं, राजसा मतलब रजोगुणी, जो रजोगुणी होते हैं वो सेंटर में रहते हैं। जरण्य गुण वृत्तस्था, जरण्य कहते हैं जो बहुत ही निंदनीय, घृणित, जो बहुत ही बहुत ज्यादा कंडम वर्क्स करते हैं, और वो कौन सा गुण होता है जिसमें वो तमोगुण में, वो कौन से जघन्य घृणित कर्म गुण में होते हैं। वृत्तस्थी मतलब जिनकी वृत्तियां या व्यवसाय, मतलब जो ऐसे कार्य करते हैं, जो खराब कार्य करते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, अधो मतलब नीचे, अधपतन हो जाता है, गिर जाते हैं नीचे, अपने अवस्था से नीचे की ओर चले जाते हैं। गच्छन्ति तामसा, जो तामसी लोग होते हैं वो नीचे को लोगों की तरफ जाते हैं। समझ में आया? अर्थात भगवान कह रहे हैं सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ही घृणित निंदनीय कर्म करते हैं, तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे यानी नरक लोकों की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक लोकों के विषय में बताया है कि कौन कौन से लोक किस तरफ हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि देखो टोटल 7 लोक हैं। कहाँ पर है? महाविष्णु की नासिक कमल से जो एक कमल का फूल निकल रहा है, जिसके ऊपर कौन विराजमान है? ब्रह्मा जी। वो एकदम ऊपर, जो एकदम ऊपर हाई जो टॉप पर जो फ्लोर है ना, वो ब्रह्मा जी का फ्लोर है, वो वहां पर ब्रह्मा जी का लोक है। ये कमल हम लोगों को दिखने में कैसा लगता है, छोटा सा कमल होगा? नहीं, ये पूरा लोक है, ब्रह्म लोक है, बहुत बड़ा, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण 8.16 में बताते हैं ना, ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावृत्ति नो अर्जुन। तो वो वाला लोक ऊपर है। अब ऊर्ध्वम मतलब जो यहाँ पर, अब ये शास्त्र जो है ना, वो यहाँ जो मृत्यु लोक में है ना, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने, मनुष्य के लिए, देखो मनुष्य को आवश्यकता है शास्त्रों की, इसलिए उनको शास्त्र प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो मनुष्य देह है ना, वो एक जंक्शन की तरह है, दूसरे सारे स्टेशन है। जंक्शन में क्या होता है कि आप डिसीजन लेते हो कि कहाँ पर जाना है, ठीक है, और बाकी जगहों पे तो स्टेशन आया है, बस रुकना है वहां पर डिसीजन। ये यहाँ पर आने के बाद भगवान श्री कृष्ण आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है। जैसे आप समझो चौराहे पर खड़े हो, एक चौराहा होता है ना, तो वहां पर आने के बाद अब ये डिसीजन आपको करना है कि आपको जाना, आपका लक्ष्य क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका लक्ष्य क्या है। जैसे अगर हम लोग नीचे उतरते हैं तो ये एक ना चौराहा आता है ना, जिसको बोलते हैं चौराहा, तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगी तो मैं लाइट हाउस पहुंचूंगी, अगर राइट साइड पे जाऊंगी तो क्लिफ्टन पहुंचूंगी, अगर ना उस साइड पे जाऊंगी ना, अब उसके अपोजिट साइड ईस्ट की तरफ जाऊंगी तो फिर है ना गार्डन में जाऊंगी, और अगर वेस्ट की तरफ जाऊंगी तो ली मार्केट चले जाऊंगी। यानी कि अब मुझे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं किधर जाऊं। क्लिफ्टन जाना है तो मुझे जाहिर सी बात है राइट साइड पे जाना पड़ेगा, और अगर है ना गार्डन जाना है तो उसी हिसाब से जो जो जगह, अब वहां पर जाके डिसीजन तो मुझे लेना है ना कि मुझे किधर जाना है। अब वो रोड जो है वो मुझे सहायता करेगा पहुंचाने के लिए, लेकिन डिसीजन किसका होगा? मेरा अपना डिसीजन होगा ना। इसके लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि मुझे जाना किधर है, और जिधर मैं जाना चाह रही हूँ वो रास्ता कौन सा है, यानी कि किस रास्ते पर चलकर मैं अपने गोल को पहुंचूंगी। ये दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, एक तो अपना गोल पता होना चाहिए, और दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी सड़क उस गोल तक पहुंचती है, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, यह शास्त्र दे दिया, उस शास्त्र में आपको पूरा गोल बता दिया, लक्ष्य बता दिया कि आपको करना क्या है, करना क्या है बता दिया, और ये भी बता दिया कि किधर जाने, किधर आप अगर है ना सप्तगुण में रहकर कार्य करोगे तो किधर जाओगे, रजोगुण में कार्य करके किधर जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे तो किधर जाओगे, भूतों की पूजा करोगे तो किधर जाओगे। टोटल जितना ज्ञान देने का है ना, वो सारा का सारा बता दिया, कुछ भी नहीं रखा, सारा का सारा बता दिया कि तुम ये सब ऐसा है इसे करने के। लेकिन फिर भी यहाँ पर आने के बाद मनुष्य भगवान से ये कहता है, क्योंकि भगवान, अब भगवान की इच्छा के बगैर, जैसे कल आपका प्रश्न था, मुझे बहुत, ये मेरा अपना प्रश्न है, मेरा अपना मतलब बचपन से मेरे हृदय में ये प्रश्न होता था कि कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, तो मैं ये कैसे मान लूं कि मैं गुनाहगार हूँ। अब इच्छा तो तुम्हारी है कृष्ण, तुम अपनी मुझे पता है तुम्हारी, जैसे हम कहते हैं व्हेन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन नॉट मूव विदाउट द परमिशन ऑफ लॉर्ड, ये तो एक तथ्य है, सत्य है कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर जो मनुष्य अपराध करता है उसमें भी कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है, तो फिर हमें पनिशमेंट हमें क्यों मिलती है? देखो भगवान ने हर एक को फ्री विल दिया, मैंने फ्री विल दिया यानी कि उसको पूरी टोटल स्वतंत्रता दी है, वो किसी को फोर्स नहीं करते। अब जो जीव है वो कौन सी शक्ति है भगवान की? तटस्थ शक्ति है, उसकी अपनी इच्छा है कि वो अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में जाए या वो बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के कंट्रोल में जाए। अब भगवान उसकी सहायता कहाँ करते हैं, भगवान की इच्छा कहाँ पर है? जैसे कहते हैं पत्ता भी नहीं, अब भगवान इच्छा आपकी है, भगवान आपकी सहायता करेंगे, भगवान की मर्जी जरूरी है, क्योंकि भगवान अब सहायता किस कार्य में करेंगे, जिस कार्य में तुम्हारी इच्छा है। इसको और देखो, वो जैसे भी मनुष्य है वो अपनी स्वतंत्रता को जैसे चाहे यूज कर सकता है, इसलिए वो माया में जाना चाहे तो माया में चला जाता है, और जब माया में जाता है तो वो अपराध करता है। फिर भी यहाँ ये प्रश्न तो हृदय में उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं तो भगवान जीव को माया में गिरने की सहायता करते हैं, वरना ये जीव जो भगवान की पराप्रकृति है वो ऐसा तो कभी नहीं करता, माया में गिरता। अब देखो, स्वतंत्रता का मतलब है टोटल फ्रीडम, हमारे पास पूर्ण स्वतंत्रता है, इसलिए हम गिरे हुए हैं। यहाँ भगवान किसी को भी फोर्स नहीं करते, स्वतंत्रता दी है, इसीलिए स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और भगवान को संतुष्ट ना करने के बजाय खुद प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास किया। तो हमारी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने ये मेटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक प्रकृति की रचना की है, और कह दिया 7.21 में क्या कहा, यो यो याम याम तनम भक्त्या श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चराम श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। देखो तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो, मैं तुमको पूरी स्वतंत्रता दूंगा, और तस्य तस्य चराम श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्, और तुम्हारी उस श्रद्धा को, तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने में मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा, क्योंकि मेरी सहायता के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हारी सहायता करूंगा। तो अब ये यहाँ पर समझने की बात है कि वाकई में हम अपराध भी भगवान की है ना सहायता के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने पूरी स्वतंत्रता दी है और भगवान सहायता करते हैं, कहाँ पर बैठ के सहायता करते हैं? भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनम भक्त, क्योंकि मैं परमात्मा रूप में संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, इसलिए जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उसी अनुसार मैं उसकी सहायता करता हूँ। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया, भगवान ने कहा 13.23 में उपदेष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इसको हमने बहुत ही सुंदर तरीके से, अगर आप वापस से उस श्लोक को पढ़ सकते हो ना तो पढ़ो, क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर तो इसी में ही है कि है ना, भगवान ने कहा कि तो भी शरीर के अंदर एक अन्य दिव्य भोगता है, बेशक वही भोगने वाला है जो अंदर बैठा हुआ है, जो ईश्वर है और परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति। उसका कार्य क्या है कि वो अनुमति देता है, किस बात के लिए अनुमति देता है? जो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा को। भगवान इतने उदार है, भगवान इतने जेनरस, भगवान इतना प्रेम करते हैं आपसे कि वो कभी किसी को फोर्स नहीं करते, फोर्सली सेवा नहीं करते हैं भगवान, करवाते हैं भगवान, क्योंकि हमारी इच्छा होती है तो हमारी उस उच्च इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान ने कहा, उपदृष्टा अनुमंता च, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ फिर ही तुम वो कर सकते हो, लेकिन उसमें इच्छा तुम्हारी है। देखो मैंने आपको बहुत दफा ये बात बताई है, श्री प्रभुपाद सेज Everything is depends on your desire. अगर आप नीचे गिरते हो तो तुम्हारी मर्जी से, अगर आप ऊपर रहते हो तो तुम्हारी मर्जी से, अगर आप सेंटर में रह जाते हो तो भी तुम्हारी मर्जी से। इसमें मर्जी तुम्हारी चलती है और सहायता भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान तुमसे प्रेम करते हैं। जो प्रेम करता है, अब कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कोई गलत कार्य करने वाला होता है, उसको जैसे छोटा बच्चा होता है उसको अगरबत्ती हम लोग यहाँ पर मेरा छोटा बेबी वो अगरबत्ती पे हाथ लगाने का दिल करता है उसको, वो रोता है कि मुझे लगाना है। मम्मी बोलती है बेटा ये लगाने से आपके हैंड में दुखेगा, आप नहीं लगाओ। फिर भी वो रोता है नहीं मुझे। तो कभी ऐसा होता है कि जला के दे दो, चलो एक दफा सीख जाएगा ना, करेगा। सहायता की उसने, जला के दे दी। लेकिन अब कुछ लोग है ना वो पढ़ के नहीं समझते हैं, लिखा हुआ है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तो। देखो ये पृथ्वी लोक सेंटर में है, बताया ना मैंने आपको, ऊपर छह लोग कौन से, जनलोक, तपलोक, महालोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, और नीचे अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तो, यदि तुम अच्छे सत्वगुण में रहकर कार्य करोगे तो तुम ऊपर जाओगे। मध्य तिष्ठसि राजसा, यानी कि अगर तुम रजोगुण में इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करोगे तो कहां मध्य में, ये जो पृथ्वी लोक है ना वहां पर सारे लोग रजोगुणी है। मध्य तिष्ठसि राजसा, जो रजोगुणी है वो मध्य में यहाँ पर रहते हैं। और जगन्य गुण वित्तस्था, और जिनके कार्य बिल्कुल जगन्य है, एकदम कंडम कार्य करते हैं, जो बिल्कुल घृणित कार्य करते हैं, निंदनीय कार्य करते हैं, वो अधोगच्छन्ति तामसा, वो तामसी लोग होते हैं, वो नीचे की नरक लोक की तरफ गिरते हैं। अब भगवान इतने उदार हैं कि वो कभी किसी को फोर्स करके सेवा नहीं लेते, वो बोलते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उनकी उदारता तो देखो, भगवत गीता के 700 श्लोक वो सब कुछ बता दिया कि क्या करना है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस गुण में मरने से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, किधर जाने से तुम्हारी मंजिल क्या होगी, हर चीज बता दिया कि किस तरह से कार्य, कब तुम पशु बनोगे, कब मनुष्य बनोगे, कब सेंटर में रहोगे, सारा का सारा एकदम परफेक्टली बता दिया। ये बता दिया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए और किससे विरक्ति रखनी चाहिए, जो सही है जो गलत है, सारा का सारा वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 18.63 में भगवान कहते हैं इदंती इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरम् मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम्, इति ते इस प्रकार, इस प्रकार किस प्रकार, अभी मैंने तुमको पूरी भगवत गीता बता दी ना, ये देखो 18.63 है, तो तकरीबन पूरी भगवत गीता खत्म होने वाली है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें पूरा का पूरा बता दिया कि क्या करने से क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार इति ते ज्ञानम आख्यातम, इस तरह मैंने सारा का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने आख्यात कर दिया, वर्णित कर दिया। गुह्यात् गुह्यतरम मया, मेरे पास जो सीक्रेट्स थे वो सारे के सारे तुम्हें बता दे। गुह्यात् गुह्यतरम, गुह्य मतलब बहुत ज्यादा सीक्रेट, गुह्यतरम मतलब उनसे भी ज्यादा सीक्रेट, बहुत सारी सीक्रेट्स जो चीजें थी मेरे पास बताने वाली वो सारी की सारी मैंने तुम्हें बता दी। विमृश्य तदशेषेण, अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम अच्छा करो या बुरा करो। विमृश्य तदशेषेण, तुम्हें अक्ल दी है, बुद्धि दी है, तुम्हें सहायता तो मैं करूंगा, लेकिन फिर भी यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा है, व्हाट यू वांट सो यू डू, आपकी जैसी मर्जी आए, यथेच्छसि तथा कुरु। इस भगवान ने कहा इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, तुम सोचो तो सही, ये शास्त्र जो है वो मनुष्य के लिए लिखे हैं। अब देखो शास्त्र में मनुष्य को क्या कहा गया कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो आत्मा के इसी तरह क्योंकि आप भगवान की परा प्रकृति हो तो आपको ऐसे कार्य करने चाहिए, क्यों फंसते हो आप मनुष्य देह है, ये मेरा ऐसे करते रहते हो। तो मनुष्य आत्मा के स्तर पर पहुंच कर कार्य कर सकता है, और जो आज भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तो, तो जाना चाहे तो ऊपर जा सकता है और जाना चाहे तो वो नीचे जा सकता है, सब अपनी मर्जी है। अब यही बात आप किसी है ना जानवर को जाके बताओ, और है ना किसी शेर को बोलो देखो आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, इसलिए आप है ना ऐसे कार्य मत करो, आप भगवान की भक्ति करो, आप भगवान का नाम लो, तो आपको ही खा जाएगा, उसके लिए नहीं है ये शास्त्र। किसी कुत्ते को बताओ, उसके लिए शास्त्र नहीं है। अब बाय चांस उसको कभी कोई भक्ति का मौका मिल जाता है, वो तो अलग बात है, वो तो है ना मतलब उसमें नहीं आता ना, नियम में तो नहीं आता। नियम क्या है? ये रूल्स एंड रेगुलेशन सारे इंसान के लिए, ये शास्त्र वेद व्यास, भगवान श्री कृष्ण ने शक्तिया अवतार लिया वेद व्यास जी के रूप में और सारे शास्त्र लिखे। ये एक मैनुअल गाइड है हमारे लाइफ की और बताया कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। पूरी स्वतंत्रता दी प्लस सहायता करने के लिए भी तैयार है। अब देखो, अब अगर भगवान सहायता, भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा होगी मैं वो कार्य करने के लिए तुम्हारी सहायता करूंगा, पता नहीं चलता तुम मेरी इच्छा के बगैर तो तुम अच्छा कार्य कैसे कर सकोगे, शुभ कार्य कैसे कर सकोगे, मेरी सत्वगुण को कैसे विकसित करोगे, मेरे पास आने की कैसे, मेरी भक्ति करने कैसे कर सकोगे अगर मैं सहायता नहीं करूंगा। तो ये चीज करने के लिए तो भगवान की सहायता की आवश्यकता है। अब भगवान सहायता करते हैं हर चीज में। अगर भगवान अपनी सहायता को हटा दें तो तुम भक्ति भी नहीं कर सके। वापस भगवान ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तो, सत्वगुण को भी विकसित करने के लिए तो तुम्हारी, तुम्हें भगवान की सहायता चाहिए ना। तो उसी तरह से अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम रजोगुण को विकसित करना चाहते हो तो भगवान प्रेम करते हैं, भगवान विवश हो जाते हैं तुम्हारी सहायता के लिए, क्योंकि उन्होंने ये प्रण लिया है कि तुम जैसा चाहोगे मैं वैसे मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि आप किधर जाना चाहते हो। मध्य तिष्ठसि राजसा, मतलब मध्य में जो पृथ्वी लोक में सारे रजोगुण अलोगच्छन्ति तामसा, अगर तुम तमोगुण में रहकर कार्य करोगे तो डेफिनेटली पशु बनना पड़ेगा, भगवान ने बता दिया। अब भगवान तुम्हारी सहायता करेगा जैसे तुम्हारी इच्छा, यथेचसि तथा करु। तो आगे श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत अच्छा समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सॉरी, ये जो हमारा श्लोक है आज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया। अब पूरा सही तरह से भगवान श्री कृष्ण बता देते हैं कि कहां क्या किस गुण में स्थित होने से आपको किधर जाना। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। ऊपर जो लोग होते हैं सब उन्नत होते हैं, उनकी अच्छी लाइफ होती है। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेज दिया जाता है। अब एक स्वर्ग लोक नहीं है, यहाँ पर साफ बता रहे श्री प्रभुपाद जी, जितना जितना आपने सत्वगुण विकसित किया है। अब सत्वगुण कैसे, ज्ञान का प्रकाश से आप विकसित करते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो, शास्त्र अध्ययन करते हो, तो उसी हिसाब से आपको उन्हीं स्वर्ग लोकों में भेज दिया जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जैसे मैंने आपको बताया था आखिर में कौन सा आता है, ब्रह्मलोक, जहाँ पर कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान करते हैं वो ब्रह्मलोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है। अब ब्रह्मलोक में आश्चर्यजनक परिस्थिति क्या है कि इस संसार में क्या है, 4,32,00,000,000 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी का 1 12 घंटे गुजरते हैं और दूसरे 4,32,00,000,000,000 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी के दूसरे 12 घंटे गुजरते हैं, यानी 8,64,00,000,000,000 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी का 1 दिन गुजरता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, तो भी सत्वगुण नामिक जीवन की सर्वोच्च अवस्था में हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि इतना आश्चर्यजनक है वहां का लोक, लेकिन यदि फिर भी हम सत्वगुण में विकसित करेंगे तो हम इस लोक को पहुंच सकते हैं। रजोगुण मिश्रित होता है, यानी कि रजोगुण क्या होता है, मिश्रित होता है, यह सत्व तथा तमोगुण के मध्य में। अब इसमें क्या है, कुछ रजोगुण में कुछ कार्य आप सत्वगुण में रहकर करते हो, जैसे रजोगुण में भी हम धन अर्जित करते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं और साथ में कुछ दान दे देते हैं या फिर ऐसा कोई कार्य कर देते हैं जिसमें हमारी अपनी भलाई की इच्छा होती है, भले ये सोचते हैं कुछ। देखो रजोगुण का क्या मतलब होता है, आकांक्षा। अब आकांक्षा आप इस संसार में रहकर पूरी करना चाहते हो या फिर स्वर्ग लोक में जाकर पूरी करना चाहते हो या फिर जनलोक तप लोक किसी और लोक में, लेकिन इच्छा तो इच्छा है ना। तो ये रजोगुण जो है वो सेंटर में है, सत्व तथा तमोगुण के मध्य में। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा अगर उसकी ख्वाहिश होती है, रजोगुण में कार्य करता है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसी तरह के उसको या तो पृथ्वी पर राजा या फिर इस तरह, क्योंकि बहुत क्रमश होता है वो, कुछ गलत नहीं करे लेकिन फिर भी कंटिन्यूअस धन संग्रह करने में, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी आ जाता है, लेकिन फिर क्योंकि कभी कभी उसके अंदर तमोगुण हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, तो नीचे आ जाता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि देखो कुछ लोग बोलते हैं ना कि किसी है ना यंत्र पर बैठकर किसी मशीन पर कोई ऐसी इन्वेंशन साइंसदान करें जहां पर बैठकर वो चंद्रलोक में चले जाए, सूर्यलोक में चले जाए या स्वर्गलोक में चले जाए। श्री प्रभुपाद जी बोलते अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं बोलते कि ये जगह पर जाने की विधि जो है वो गुण है, कोई दूसरा वाहन आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं जा सकता। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए, यानी कि रजोगुण में क्या होगा, हो सकता है कि इतना ज्यादा रजोगुण विकसित हो जाए अगले जन्म में पागल ही बन के बैठ जाओ, रजोगुण में संसार में ही आना पड़ेगा। यहाँ पर निम्नतन गुण जो है तमोगुण को अत्यंत ही घृणित जघन्य कहा गया। भगवान ने कहा ना कितना ये वर्ड में सुन के अच्छा ऐसा लगता है, हिला देता है, जघन्य गुण वृत्तस्थ हो। जघन्य मतलब बहुत ज्यादा निम्न कोटि का जो घृणित जो है जघन्य कहा गया है। अज्ञानता यानी तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत ही भयावह है, जघन्य कार्य करते हैं, बहुत ही गिरे हुए कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम भी बहुत ही गिरा हुआ होगा। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है, बहुत ही नीचे वाला गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पशुओं, पक्षी और सरपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी योनियों के विषय में बताते हैं कि देखो मनुष्य योनि के नीचे कौन कौन सी होती हैं, जैसे उसमें महाभारत में शायद या विष्णु पुराण में बताया गया, जलजा नव लक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख किस्म के प्राणी होते हैं जो जल में रहते हैं वो निम्नतम होते हैं। और उसमें कौन कौन सी, ये फिशेज आती हैं, प्रॉन्स और स्टार फिश और ये सब 9 लाख किस्म की योनियां जल में विहार करती हैं। स्थावर लक्ष्य विशंति, स्थावर कहते हैं जो वृक्ष आदि होते हैं, वनस्पति आदि होते हैं, वो कितने लाख, 20 लाख किस्म के वृक्ष इत्यादि, कितने हुए 9 और 20, कितने हुए हाँ आगे क्रमिया रुद्र संख्या का, रुद्र कहते 11 लाख 11 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े जो रिंगते हैं, जो रिंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो कितने हैं 11 लाख किस्म के, तो कितने हुए 9 लाख जल में रहने वाले, 20 लाख विषंती जो स्थावर होते हैं वो, और 11 लाख कौन से रेंगने वाले। और आगे 30 लक्षाणी पशुम, पशु किसको बोलते हैं, जो 4 पैरों पे चलते हैं जैसे कुत्ता, गधा, सुअर और ये हिरन, और ये जो 4 पैरों वाले पशु होते हैं ना उनको वो कितने किस्म के होते हैं 30 लाख किस्म के पशु। और पक्षीराम 10 लक्षाणी पक्षी होते हैं वो कितने होते हैं 10 लाख किस्म के पक्षी होते हैं, ये टोटल मिलकर कितने होते हैं 80 लाख। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तमोगुण विकसित करने के बाद नीचे चले जाते हैं और यह प्रकृति का नियमत है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, स्त्री सर्पों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं, ये सब नीचे की योनियां हैं 80 लाख। और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती हैं। और जब तमोगुण में रहकर हम कार्य करते हैं, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रजोगुण में रहकर आप कार्य करते हो वो भी एक तरह से तमोगुण है, क्योंकि अभी भी श्री प्रभुपाद ने बताया कि वो मिश्रित है। रजोगुण में कार्य करते करते आप कब तमोगुणी रहकर अपने शरीर के लिए सोचना शुरू कर देते हो और सिर्फ यही कार्य कर रहे होते हो तो तमोगुण में अज्ञानता में है, तो फिर डेफिनेटली उसका भी परिणाम यही मिलने वाला है। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत ही सार्थक है, कहाँ पर लिखा हुआ है, जो श्लोक का लास्ट वर्ड है कौन सा, जगन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं शब्द को जरा नोट करो, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं, कंटिन्यूअस वो हमेशा तमोगुणी होते हैं, अज्ञानता में रहते हैं और तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, उनका भविष्य अत्यंत ही अंधकारमय होता है। उनको तो नीचे गिरना ही है जो तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, जो अज्ञान में रहकर कार्य करते हैं, वो उनका जो भविष्य है। अब यहाँ पर भविष्य इनका तो दोनों टाइप का है ना, जो अगर ये भौतिक भविष्य भी होगा तो वो भी अंधकार में ही होगा, और जो आध्यात्मिक भविष्य तो वैसे ही गिरने वाले हैं, पशु बनने वाले हैं। लेकिन रजोगुण लोग जो सोचते हैं ना कि हमारा भविष्य इससे अच्छा होगा, तो वो हो सकता है रजोगुणी कार्य करने से इस संसार में उनको बहुत उन्नति हो जाए, लेकिन फिर भी उनका भी भविष्य तो अंधकारमय ही होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सत्वगुणी बनने का सुअवसर है। ये जो मनुष्य देह है ना, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया भगवान श्री कृष्ण ने, सुअवसर दिया, गोल्डन चांस दिया है कि आप अपने तमोगुण और रजोगुण को दबा लो और सत्वगुणी बनने का प्रयास करो, और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। क्या करना है, एक गाना ही तो गाना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसे गाते रहो और सारे गुणों से पार हो जाना पॉसिबल है। इतना अच्छा चांस मिला है और यह पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। चैतन्य महाप्रभु का ये जो अनुष्ठान है वो 10,000 साल तक ही रहेगा, और बाद में जाके पता नहीं कौन से गुण में मरे और कहां पशु, कितने जन्मों करोड़ करोड़ जन्मों के बाद भी पता नहीं। ये जो हमें मिला है ना अभी, स्वर्ण युग इसको बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जिसमें जन्म लिया है, और इतना इजीली भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ नाम जप करने से ही भगवान श्री कृष्ण हमें अपने पास बुला लेते हैं, सारे गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि देखो इतना अच्छा गोल्डन चांस तुमको मिला है, मनुष्य देह मिला, सारे शास्त्र मिले, गुरु मिले, आपको घर बैठे श्रीमद् भगवद गीता बताई जा रही है, फिर भी आप कहते हो कि भगवान की इच्छा से मैं अपराध कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर बताया कि वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान ने बुद्धि क्यों दी है, भगवान ने शास्त्र क्यों दिए हैं, भगवान ने चांस दिया है और भगवान सहायता भी कर रहे हैं, तो मैं कैसे इन गुणों से पार हो जाऊं और कृष्ण को प्राप्त करके अपनी वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं, जहां पर मुझे जाने के बाद मुझे वापस आना नहीं पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तो ऐसी जगह पर जाने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी और भगवान हमारी अवश्य सहायता करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।